जाकर हनुमान पश्चिम दरवाजे पर जाएगा। बहुत से बंदर हनुमान की आज्ञा में रहेंगे और दैत्य दानव संघानाम इन सब का अपराध करने वाला राक्षस राज रावण है। इस रावण की सेना का विनाश हनुमान जी अपनी सेना से करेंगे और उत्तर की ओर मैं और लक्ष्मण दोनों रहेंगे। हमारे साथ में जामवन जी रहेंगे और बानरेंद्र सुग्रीव रहेंगे और हमारी सेना का भी बीच में एक पड़ाव रहेगा। वो पड़ाव ऐसा रहेगा कि चारों दिशाओं की तरफ झुकता हुआ रहेगा। जिधर सेना की कमी हो उधर हमारे पड़ाव से उधर रवाना हो जाए। नचैव मानुषम रामम कार्यम हरिविराहवे। इसमें देखो एक बात है, जितने भी बंदर हैं वो कोई बंदर अपना वेश नहीं बदलेगा, ध्यान देना। ये जितने बानर इच्छानुसार रूप बनाने वाले हैं, कोई भी बंदर मनुष्य का रूप न बनाए, कोई भी बंदर यहां अपना और रूप न बदले, एक ही रूप रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे पहचानने में सुविधा रहेगी। बांदरा एवं नश्चिन्नम, हमारा चिन्ह तो केवल बंदर ही है और हम सात हैं जो मनुष्य के रूप में रहेंगे। एक तो मैं हूं, एक मेरा भाई लक्ष्मण है, दो एक विभीषण है और एक विभीषण के साथ में आए हुए चार इसके मंत्री हैं। बस इसके अलावा कोई मनुष्य रूप में नहीं रहेगा, सब बानर आदि अपने रूप में रहेंगे। अब क्या करेंगे, सुबेल पर्वत के ऊपर चलते हैं। तो सब लोग सुबेल पर्वत के और ऊंचे शिखर के ऊपर चढ़ने लगे ताकि वहां से अब लंका को आराम से देखा जाए। ततस्तु रामो महता बलेन प्रच्छाद्य सर्वाम पृथ्वी महात्मा प्रहृष्ट रूपो भिजगाम लंकाम कृत्वा मतिम सूर्य वधे महात्मा। इनका लक्ष्य तो यही था कि शत्रु का वध किया जाए। तो राम जी महाराज अपनी सेना का पूरा व्यू संभाले हुए हैं और सुबेल पर्वत के ऊपर जाकर फिर लंका को देखते हैं। वहां से वे लंका को देखते हुए राम और सुग्रीव, राम के लक्ष्मण के सामने सुग्रीव को बोलते हैं, विभीषण को भी बोलते हैं, बड़े गंभीर वाणी में बोलते हैं कि देखो विभीषण, कोई कहता है कि हम रावण की लंका में आए हैं। नहीं नहीं, हम रावण की लंका में नहीं आए, हम आपकी लंका में आए, क्योंकि हमने आपका वहां अभिषेक कर दिया, वो लंका आपकी हो गई। हम इस लंका के अंदर राजा के बिना पूछे नहीं आए, ऐसी बात नहीं है। आप हमारे साथ में, आप हमको लेके आए हैं, इसलिए लंका आपकी है। देखो ये लंका तो बड़ी सुंदर है भाई, इसलिए इस लंका को देखते हैं कितनी बढ़िया बनाई है। इस दुष्ट व्यक्ति ने, रावण ने अपने मरने के लिए मेरी भार्या का हरण किया है। कोई आदमी जहर पी ले और जहर पी के हंसता रहे कि आज हमने बहुत बढ़िया जल पी लिया, अरे जल नहीं पी लिया, उसमें जहर मिला हुआ है। ऐसे ही रावण सोचता है कि मैंने सीता का हरण कर लिया, अरे सीता का क्या हरण कर लिया, तू जहर पी गया। इस रावण को वास्तव में धर्म के तत्व का ज्ञान नहीं है, तभी तो इसने अपने कुल के ऊपर कुठाराघात कर लिया। बड़ी नीच बुद्धि की, बड़ा नीचा काम किया रावण ने। मैं तो ये चाहता हूं कि विभीषण, इस लंका का राजा रावण जो यहां है, इसका जल्दी से जल्दी वध हो जाए, मेरे सामने में इसका वध देखना चाहता हूं और इसके वंश सहित इसका नाश देखना चाहता हूं। देखो विभीषण, ये क्या जमाना है, क्या दुनिया की रीत है, आदमी एक पाप करता है उसका फल सबको भोगना पड़ता है। नीचे नात्मचारेण कुलम तेन विनश्यति, एक के कारण से सारे कुल का नाश होगा। देखो कभी कभी पानी के जहाज में हजारों आदमी एक साथ मरते हैं, कभी कभी हवाई जहाज में एक साथ लोग मरते हैं सैकड़ों आदमी, कभी कभी कोई ऐसी प्लेग की आदि की बीमारी होती है तो एक साथ कई लोग मर जाते हैं एक गांव में ही। ऐसे एक साथ जब मौत होती है तो ये एक बार पूछा गया सेठ जी से, जयदयाल जी गोविंदका जी से, कि कर्मों का फल यदि होता है तो एक आदमी का कर्म का फल इतने आदमी एक साथ कैसे भोगते हैं। तो सेठ जी ने बताया कि देखो कर्म तो कोई एक ही करता है, परंतु उसका समर्थन करने वाला होता है उसको भी वही पाप पुण्य लगता है जो करने वाले को लगता है। उन्होंने उदाहरण देके बताया कि जैसे किसी शहर में कुत्ते बहुत हो गए, अब वो कुत्ते इतने हो गए कि अब क्या करें, तो वहां शिकायत की कि हमारे मोहल्ले में कुत्ते बहुत हैं। तो सरकार के पास शिकायत गई, उसने सब अधिकारियों को बुलाया कि भाई कुत्ते बहुत हो गए क्या करने चाहिए। तो किसी ने कहा कि कुत्तों को तो मार देना चाहिए, ये ठीक है ना कि ठीक है। अब जो जो लोग कहेंगे कि कुत्ते को आटे के अंदर या काय में गोली देकर के मार दो, वे सब के सब पाप के भागी हैं। अब हमने ले जा करके और कुत्तों को वो जहरीली दवाई नहीं दी थी, लेकिन उसका फल हमको भी मिलेगा क्योंकि हमने उसका समर्थन कर दिया ना। समर्थन नहीं करते तो कोई बात नहीं थी, पर समर्थन करने वाला और पाप करने वाला बराबर ही पाप के भागी होते हैं। तो देखो एक रावण है, उसका समर्थन करने वाले जितने राक्षस हैं वो सब समान पाप करने के अधिकारी बन गए, सब मारे जाएंगे। अब रावण के ऊपर किस प्रकार से अपने को चढ़ाई करनी है सोचो। राम जी महाराज की बात सुनकर के सुग्रीव विभीषण ये सब हनुमान अंगद नील ये विचार करने लगे कि भाई अब अपने को रावण के ऊपर बड़ी अच्छी मोर्चाबंदी करनी है, और ऐसी मोर्चाबंदी करनी है कि रावण को कभी ऐसा युद्ध मिला नहीं, ऐसी मोर्चाबंदी करनी है। देखो सीधा ही जाकर कोई किसी के ऊपर कोई किसी के ऊपर टूटता है तो वो युद्ध नहीं होता, वो तो एक तरह से प्रमाद है, ये कुछ नहीं, उसका योजनाबद्ध तरीके से युद्ध करना होगा। युद्ध के अंदर शरीर बल की जितनी आवश्यकता है उससे ज्यादा बुद्धि बल की आवश्यकता है। तो देखो ये जो लंका है ये चार दरवाजे हैं, कौन से दरवाजे से कौन जाए कौन से दरवाजे से कौन जाए, ये विचार यहां इस चांदनी रात्रि में लंका को देख देख के करना है। दादी सुस्ते हरि श्रेष्ठा प्राकारम अपरम कृतम, बहुत से बांदरों ने तो बहुत बड़े बड़े वो दरवाजे देखे, उन्होंने कहा कि देखो इन दरवाजों को तोड़कर हम अंदर घुस जाएं। किन्हीं बंदरों ने कहा कि छलांग लगा कि हम आसमान में चले जाते हैं तो हम परकोटों पर चले जाएं, परंतु चले तो जाओ लेकिन वहां पर कई प्रकार के यंत्र लगे हुए हैं, उन यंत्रों के द्वारा तुम वहां परकोटों के अंदर जा नहीं सकते हो। परकोटों के ऊपर सैनिक हैं और सैनिकों के पास यंत्र हैं, यंत्र लगने के कारण से उन परकोटों के पास पार करना बड़ा मुश्किल है। ऐसी ये बातें कर रहे थे, सूर्य भगवान अस्ताचल की तरफ गया, चंद्रमा चमकने लगा, भगवान ने विभीषण जी का आदर किया और उसके बाद वहां तरह तरह की बातें होने लगी। देखो लंका के वन और बगीचों को वहां देखा जा रहा था, लंका के वन और बगीचे सबके मन में आश्चर्य पैदा करने वाले थे। चंपक अशोक बकुल साल ताल तमाल ये ऐसे ऐसे वृक्ष थे जो सब जगह जो छाए हुए थे, और जिन वृक्षों के ऊपर फूल लगते हैं वो ऐसे फूल से लदे हुए थे मानो यहां पर फूल के बड़े बड़े पर्वत हों। ये लंका इस प्रकार से सुशोभित हो रही थी जैसे इंद्र की अमरावती सुशोभित होती है। बढ़िया बढ़िया यहाँ के फूल, लाल लाल फूल, और कोई नीले रंग का, कोई लाल रंग का। फूलों की तो ये वास्तव में बहुत बड़ी उत्पत्ति स्थल है ऐसा दिख रहा था। ऐसा लगता है कि नंदनवन और चैत्ररथ वन ये दोनों लंका से ही ले गए होंगे। वहां पर भौंरे इतना मधुर गुंजान करते हैं कि भौरों की आवाज न पहचानने में आने पर भी उनके गुनगुनाहट सुनने का मन करता है। जलकाक बोलता है, बगुला बोलता है और हिरण यहां नाच रहे हैं। अरे इनको क्या पता है, राम जी कहने लगे, इनको क्या पता है भाई कि संसार में प्रिया का वियोग क्या हुआ करता है। इस प्रकार से भाई ये पक्षियों की आवाजें और फूलों का ऐसा रात्रि के समय में खिलना सबको बड़ा अच्छा लग रहा था। बानर लोग उस समय बड़े प्रसन्नता से लंका को देख रहे थे। बड़ी अच्छी हवा चल रही थी। बड़े बड़े यूथप जो कि सुग्रीव की आज्ञा से वहां आए हुए थे, वे यूथप वन जंगल के अंदर घूमते थे तो वहां के सिंह हैं, हाथी हैं, सब इधर उधर छिप गए हैं। क्योंकि बंदर लोग जब जमीन पर कूदते थे तो लंका की जमीन हिलने लगती थी। खूब वहां पर मिट्टी मिट्टी हो गई। रीछ है, सिंह है, भैंसे हैं और हिरण है, दूसरे पक्षी हैं, इनका बहुत नाद हो रहा था। और इस प्रकार से सुवेल पर्वत जो कि त्रिकूट पर्वत के ऊपर है वहां ये भीषण कर रहे हैं। वहां पर एक बहुत ऊंचा शिखर भाग और है, उस शिखर भाग के ऊपर फिर चढ़ गए रात्रि में। दुष्प्रापम शकुनई रपि, जहां पर रात्रि के समय में कोई पक्षी भी नहीं जा सकता, ऐसे शिखर भाग के ऊपर राम जी की सेना चली गई। रावण पारित लंका यहां से बिल्कुल साफ दिखती है। बांदरों ने वो देखा, बांदरों ने देख करके रावण के वो महल देखे, कितने ऊंचे महल हैं, सत मंजिले महल हैं। और आकाश की तरफ देख करके आकाश में एक स्थान पर जाकर देखा कि ये वैष्णवम पदम, ये विष्णु पद है, यहां पर ध्रुव जी रहा करते हैं। इस लंका के अंदर एक चैत्य प्रासाद और है। एक तो देखो पुष्पवाटिका में था और पुष्पवाटिका के अतिरिक्त एक चैत्य प्रासाद उनके लंका के अंदर था। तो कैलाश शिखर के समान वो ऊंचा एक महल था, शिखर भाग उसका, उसको शतेन रक्षसाम नित्यम, 100 राक्षस सदा उसकी रक्षा करते थे। दिखने में वो बड़ा सुंदर, उसके पास बगीचा भी बड़ा अच्छा। तो लक्ष्मण जी आदि ने सबने विचार किया कि इस शिखर का अपने को नाश करना है। तो ताम समृद्धाम समृद्धार्थाम लक्ष्मीवान लक्ष्मणाग्रजय, लक्ष्मण जी ने राम जी की ओर इशारा करते हुए कहा कि देखो राम, कितनी अच्छी ये नगरी है, देखो मुझे तो बड़ी अच्छी लगती है, आपको कैसे क्या लगती जरा बता दीजिए। राम जी महाराज ने नेत्र बंद किए और नेत्र बंद करके थोड़ी देर ध्यान लगाया, ध्यान लगा करके और उन्होंने राम जी महाराज ने जो कुछ देखा वो उन्होंने बताना चालू किया। इधर जब राम जी महाराज सुवेल पर्वत पर बैठे हुए थे और बातें चल रही थी तो विभीषण ने कहा कि देखो महाराज, वो जो अपने महल के ऊपर ऊपर का भाग है, रावण वहां पर कुश्ती खेला करता है। वो रावण वहां पर महाराज छत्र लगाए हुए बैठा है, दसों दिशाओं को देख रहा है। विश्वकर्मा के द्वारा बनाई हुई लंका की कारीगरी को देखकर आश्चर्य में डूबता है। ये महाराज लंकापुरी है जो राक्षसों से घिरी हुई है, इसमें राक्षस राज रावण से कोई बात तक भी नहीं कर सकता है। और देखो जिस राक्षस के ऊपर छत्र लगा हुआ है, चंवर डुल रहे हैं, जिसके लिए बारंबार जय हो की आवाज लगती है, और लाल चंदन जिसके लगाया हुआ है कितना अच्छा मालूम दे रहा है। ऐरावत विषाणाग्नि उत्कृष्ट किणवक्षसम, ऐरावत हाथी का दांत जिनके ऊपर लगने के कारण से बार बार घाव पड़ने के कारण से जो स्वस्थ हो चुके हैं, ऐसे ये रावण राक्षस राज रावण वहां पर बैठे हैं। ये कहना हुआ तो उसी समय में सुग्रीव तो छलांग मार करके रावण के महल के ऊपर चढ़ गए। सुग्रीव ने आव देखा न ताव देखा, सीधे वे तो वहां से उड़ गए। सब बंदर एकदम हतप्रभ हो गए, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। सुग्रीव जी महाराज जाकर के रावण के महल के ऊपर जो अखाड़ा था उस अखाड़े पर खड़े हो गए और जोर से गरजते हुए कहा, नीच राक्षस, मैं संपूर्ण त्रिलोकी के नाथ श्री राम का दास हूं और मेरा नाम सुग्रीव है, और मैं आज तुझे इस सिंहासन से उतार कर और तुझे हाथों में मसल कर आज तुझे यमलोक में भेजना चाहता हूं। इतना सुनने के बाद निशाचर कहलाया कि सुग्रीव, हम तो तुमको सुग्रीव बोलते हैं, परंतु तुमको मालूम नहीं तुम किस नाम के योग्य हो। सुग्रीव ग्रीवा बोलते हैं गर्दन को, जिसकी गर्दन बड़ी अच्छी है उसका नाम सुग्रीव है, लेकिन तुम्हारी गर्दन अच्छी नहीं है और तुम्हारी गर्दन को अभी मैं काट देता हूं तो हीन ग्रीव हो जाएगा। तो हे सुग्रीव, तुम्हारा नाम मैं बदल दूंगा और तुझे हीन ग्रीव बना दूंगा। इतना कहकर के रावण अपने आसन से खड़ा हुआ और आसन से खड़ा होकर के और सुग्रीव के साथ में जा धमका, दोनों एक दूसरे को पकड़ लिए। अब दोनों ने एक दूसरे को पकड़ लिया और ऊपर वो खेल रहे हैं, माने लड़ रहे हैं, और वहां महल के चारों तरफ बड़ी भारी आग और ये जल की खाई है, और पास में ही वहां पर सुरक्षा के लिए परकोटा भी बनाया हुआ है। वहां पर एक छत के ऊपर दोनों आपस में लड़ रहे हैं। और परस्परम स्वेद निदग्ध त्रव, दोनों लड़ते लड़ते दोनों के शरीर से पसीना पसीना हो रहा है। लड़ते लड़ते दोनों के शरीर के अंदर खून की गति बढ़ने से शरीर के अंदर ललाई दिख रही है। दोनों एक दूसरे को इस प्रकार से कुश्ती के अंदर पकड़ करके और अपनी अपनी बाजी लेने में दिख रहे हैं, जैसे कोई शालबली और किंसुक के वृक्ष आपस में मिल गए हों। मुक्कियों की मार करके, ताल के द्वारा लात मार करके, कराग्र घाते अंगुलियों आदि के द्वारा एक दूसरे पर आघात हो रहा है और दोनों ने एक दूसरे को पकड़ लिया है। बड़ा भारी भय हो रहा है, कहीं ऊपर किनारा है, यदि ये दोनों के दो नीचे गिर गए दोनों में से कोई नहीं बचेगा, इतनी नीचे गहराई है। उस गहराई को देख करके भी भाई जो है सुग्रीव के मन में कोई भय नहीं, रावण के मन में भी कोई भय नहीं। कृत्वा नियुद्धम वृषमुग्र वेगो कालम चिरम गो पुरद्वेदी मध्ये, और इस प्रकार से भाई वे दोनों लड़ते 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 वो ने उसने उसको धक्का दिया, उसने उसको पकड़ लिया। ऐसे पकड़ते पकड़ते वे एक बार ऊपर से नीचे कूदे तो वहां पर एक चौकी बनी हुई थी, चौकी पर आ गए। चौकी पर आए तो उस समय में सुग्रीव अपने बाजी से लेना चाह उड़ करके वापस ऊपर चला गया तो सुग्रीव भी चले गए। सुग्रीव के मन में आया कि देखो भाई, यदि आज ये रावण अपने मन से शुद्ध होता तो मैं इसके साथ प्रेम से आलिंगन करता, परंतु ये तो रावण तो वास्तव में सीता का हरण करके बड़ा भारी पाप किया हुआ है, अतः आलिंगे चालिंगे बहुयोक्त्री माने उसको उस समय उठा करके बार बार उसको छाती से लगा लगा करके और सुग्रीव ने नीचे पटकने की पूरी कोशिश की। संचय ऋतु संप्रति युद्ध मार गई, अपने अपने युद्ध के जितने उनके पास कलाएं थी वो कलाएं दोनों दिखाने लगे। अब सुग्रीव पटकने लगे, रावण पड़े नहीं। तो जैसे कोई दो सिंह लड़ते हो, जैसे कोई दो हाथी लड़ते हो, जैसे कोई दो जो है बड़े योद्धा एकदम आपस में गुद गए हो, इस प्रकार से वे जो है लड़ रहे थे। लड़ते लड़ते भाई क्या बताएं, उनमें कोई कम नहीं था। व्यायाम शिक्षा बल संप्रयुक्त, व्यायाम में शिक्षा में बल में ताकत में कोई कम नहीं था। दोनों एक दूसरे को जीतने के लिए पूरी आशा लगाए हुए थे। बहु तमीर वारण वारणा भैर निवार परवारणा बहु चिरेण कालेन भृषम प्रयुद्ध। बहुत देर तक दोनों लड़ते रहे और लड़ते लड़ते उन दोनों का बहुत क्रोध बढ़ गया और उस समय में उन्होंने तरह तरह के पैंतरे लिए। माने दोनों यदि एक दूसरे को छोड़ते भी हैं तो वापस ताकत लगा करके पकड़ने के पैंतरे के अंदर आए हुए हैं। तो भाई कोई तो पक्षी के समान यूं उचक करके पकड़ना चाहते हैं और इनमें से कोई वक्र गति हो थोड़ा टेढ़ा होकर के उसको दाव न दे करके अपना दाव लेना चाहता है। परिमोक्षम प्रहाराणाम वर्जनम परिधावनम, माने दूसरे के मोक्ष में हम आवे नहीं, दूसरा हमको पकड़े नहीं और हम दौड़ करके सफल हो जाए, इस प्रकार से सब आपस में लगे हुए थे। इसी समय में रावण ने क्या किया, सुग्रीव के एक बार धक्का दिया, धक्का देकर जाकर एक जगह खड़ा होकर के आंख मीचने लगा, आंख मीचने लगा। सुग्रीव को पता चला अरे यहां ये माया दिखाएगा और माया मैं जानता नहीं हूं, मेरे पास तो माया केवल भुजाओं की है और इसके पास है कपट की माया। तो सुग्रीव ने उस समय जोर से छलांग लगाई, छलांग लगा करके और सुग्रीव वापिस अपनी सेना में आ गए। अतः हरिवरनाथ प्राप्त संग्राम कीर्ति निश्चर पतिमाज योजयित्वा क्रमेण गगनमति विशालम लंगयित्वार्क सूनु हरिगण बल मध्य राम पार्श्वम जगाम। तो इस प्रकार से सुग्रीव जी महाराज रावण से लड़ करके युद्ध करके और जो है आकाश के अंदर से दौड़ करके राम जी के पास आ गए। सब बंदरों को बड़ा हर्ष हो गया। हर्ष होने के बाद में सब बंदरों ने उनको कहा, वाह सुग्रीव जी बड़ा अच्छा किया, बड़ा अच्छा किया, बड़ा अच्छा किया। इसी बीच में भाई राम जी महाराज ने सुग्रीव का अभिषेक किया, धन्यवाद देते हुए कहा कि देखो सुग्रीव तुमने बड़ा अच्छा किया, छाती को छाती से लगाया राम जी ने, परंतु देखो हम लोगों से बिना विचार विमर्श किए भग गए, ऐसा साहस नहीं करना चाहिए ना, वो शत्रु का देश है, शत्रु देश में क्या क्या बचने के साधन है उनके पास में और अपने को कहां कहां पर वो पकड़ सकते हैं, इससे उनके पास साधन है, ऐसा साहस अच्छा नहीं होता। एक तो साहस होता है, एक दुस्साहस होता है। दुस्साहस, साहस माने जो है साहस माने हिम्मत, और ये दुस्साहस क्या होता है कि जो साहस अच्छा नहीं होता, अति कर लेना, बिना सोचे समझे अपनी हिम्मत प्रकट करना, ऐसे काम देखो राजाओं को नहीं करना चाहिए। आपको मालूम है कि अभी आप जब अकस्मात कूद के चले गए तो हमारे मन में कितना संदेह पैदा हो गया, सारी बांदर सेना डर गई, अरे अकस्मात सब बंदर ऊपर जाए तो क्या पता पकड़े जाए, क्या पता क्या कोई माया हो, ऐसा भी ठीक नहीं लगता, और तुम वहां पर अकेले लड़ते हो तो हमारे दिल के अंदर बड़ी चिंता हो गई। विभीषण जी भी बड़े चिंतित हो गए, सब लोग चिंतित हो गए। देखो सुग्रीव जी, आइंदे आप ऐसा नहीं करेंगे, यदि आप इस प्रकार से संदेह में पड़ जाएंगे तो फिर मैं सीता को लेकर क्या करूंगा, मुझे सीता से क्या मतलब है। भरतेन महाबाहो लक्ष्मणेन यवि यसा, छोटे भाई भरत से क्या मतलब, लक्ष्मण से भी क्या मतलब, शत्रुघ्न से भी क्या मतलब, और फिर मेरा मेरे जीने से भी क्या मतलब। आपको मालूम है कि नहीं, मैं यहां केवल सीता की रक्षा के लिए नहीं आया हूं, सीता की प्राप्ति मेरा उद्देश्य नहीं है, मेरा उद्देश्य धर्म की रक्षा है। तो मित्र की रक्षा भी तो, मित्र धर्म भी तो एक धर्म होता है ना। जैसे मैं पितृ धर्म के लिए वन में आया हूं, और जैसे मैं स्त्री की रक्षा का धर्म स्वीकार करके सीता के लिए आया हूं, उसी प्रकार से एक मित्र की रक्षा भी तो करना मेरा धर्म है। वो मेरा धर्म मेरे सामने यदि मित्र मर जाता इस प्रकार से, तो वो किस प्रकार से मेरे लिए कल्याणकारी बात होती। हत्वा चाहम रणे रावणम युद्धे सपुत्र बलवान अहम। ओहो, ये तो बात ठीक नहीं है, अच्छा नहीं हुआ। तुम यदि नहीं आते, तुम यदि वहां पर रावण के द्वारा मारे जाते, तो भाई यहां पर मैं तो लंका का राजा तो विभीषण को बना देता, रावण को भी मार देता, और विभीषण को लंका का राजा बना देता, और भरत को मैं अयोध्या का राजा बना देता, और फिर मैं भी जंगलों में जाकर तुम्हारी याद के अंदर समाप्त हो जाता। सुग्रीव जी ने कहा कि हे राम, न तो मैंने कोई योजना बनाई थी लड़ने की, न कोई मैंने पहले सोचा था, वो मुझे रावण जो ही दिखाया, मेरे मन में आया कि तू नालायक सीता की चोरी करके यहां आया है, तू चोर है। तो भार्या पहरतारम दृष्ट्वा, आपकी भार्या का हरण किया, इस कारण से इतना क्रोध आया, वो क्रोध में अपने आप में दबा नहीं सका। अतएव मैंने इस प्रकार से आपसे बिना पूछे काम कर लिया। राम जी महाराज ने कहा कि लक्ष्मण जी से कहा, देखो लक्ष्मण, परिग्रीय उदकम शीतम। तो देखो सुग्रीव जी, आइंदे आप ऐसा नहीं करेंगे, चलो सुग्रीव का मुंह धुपाओ, सुग्रीव को ठंडा पानी पिलाओ, और सुग्रीव को प्रसन्न करो। और उसके बाद राम जी महाराज ने अब सेना का ठीक ढंग से विभाग करना बताया, और कहा कि देखो लक्ष्मण, मुझे कुछ यहां के लक्षण अच्छे प्रतीत नहीं हो रहे हैं। लंका के अंदर एक बहुत बड़ा उत्पात होने वाला है। ये देखो, ये वायु कैसे बह रही है, खरस्पर्श वायु है, बड़ी कठोर है वायु। ये देखो, थोड़ी थोड़ी देर में पृथ्वी में कंपन होता है, पर्वत के शिखर कांप रहे हैं, और सांप है ये राजी हो रहे हैं, मेघ है ये अच्छी गर्जना नहीं कर रहे हैं, मेघों की गर्जना से हमारा दिल यूं अप्रसन्न हो रहा है। क्रूरा क्रूरम प्रवर्षन्ते, और क्रूर प्राणी क्रूर की वर्षा कर रहे हैं। ये देखो सायंकालीन संध्या है, ये कैसी हो गई है, रक्त चंदन संकाशा संध्या परम दारुणा। ये संध्या है इस समय रक्त चंदन के समान लाल हुई हुई है, और सूर्य मंडल अग्नि मंडल ये सब जलते हुए से मालूम देते हैं। आदित्यम अभिवाष्यंती जनयंतो महत भयम्। सूर्य की ओर देखते हैं तो हमको बड़ा भय लगता है, और ये बेचारे पशु हैं, पक्षी हैं, ये जब आवाज करते हैं तो ऐसा मुंह बिगाड़ करके आवाज करते हैं, बड़ी दया की मानो कोई भीख मांगता हो। जिसको दया की बड़ी आवश्यकता हो वह जैसा बोलते हैं, ऐसा ये जीव जंतु बोल रहे हैं। देखो रात्रि के अंदर चंद्रमा उगा हुआ है, लेकिन प्रकाश नहीं है, बिना बादल के ही चंद्रमा के ऊपर जाने कोई रुकावट आ गई। जिस समय में प्रलय होता है ना, उस समय में जो लक्षण होते हैं वो लक्षण दिखाई दे रहे हैं। ये चंद्रमा छोटा रूखा और अच्छा मालूम नहीं दे रहा है। सूर्य के पास में नीला नीला रंग दिखाई देता है, सूर्य भी रूखा मालूम देता है। लक्ष्मण, ये नक्षत्र भी जो दिखाई दे रहे हैं, ये भी अच्छे प्रसन्न दिखाई नहीं दे रहे हैं। युगांतमिव लोकस्य पश्य लक्ष्मण संसति। जिस प्रकार से कोई प्रलय के अंदर नाश के लक्षण पैदा होते हैं, वो लक्षण पैदा हो रहे हैं। कौओं को देख लो, बाजों को देख लो, गीदों को देख लो, ये सब एक साथ टूट पड़ते हैं। गीदड़ी देखो कैसी बोलती है, और ये राक्षस और बानर, इनके आपस में जब युद्ध भयंकर होगा तो इन दोनों के शरीर का मांस और खून यहां लंका के अंदर जो है फैल जाएगा। अपने सब बांदरों को रात्रि का समय सब बांदरों की रक्षा करो, सब बंदरों को अपने लोग संभालते संभालते चलो।